पृष्ठ 112 6 श्रव्य काव्य मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य से तात्पर्य, मुक्तक काव्य तारतम्य के बंधन से मुक्त होने के कारण मुक्तेन मुक्तम मुक्तक कहलाता है और उसका प्रत्येक पद स्वतः पूर्ण होता है। मुक्तकों में भी क्रम न्यास हो सकता है, जैसा कि गोस्वामी जी की गीतावली में या सूर सागर के पदों में है, किंतु उनके पद एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखते, वे स्वतः पूर्ण है। मुक्तक के भेद, मुक्तक के प्रमुख भेद अपने पाठ्य और ज्ञेय रूप में किए हैं, किंतु इन दोनों के बीच की रेखा बड़ी सूक्ष्म और अस्थिर है। पाठ्य सामग्री भी ज्ञेय हो जाती है, किंतु कुछ पद या छंद ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से ज्ञेय होते हैं। ज्ञेय और पाठ्य, यह बात तो ऊपरी आकार से संबंध रखती है, किंतु अब यह भेद कुछ कुछ विषय प्रधानता और विषय प्रधानता में परिणित हो गया है। ज्ञेय में निजी भावातिरेक की मात्रा कुछ अधिक रहती है और पाठ्य में कवि बात को एक निरपेक्ष दृष्टा या वकील के रूप में कहता है। पाठ्य मुक्तक प्रायः सूक्तियों के रूप में आते हैं। ऐसे मुक्तक प्रायः नीति विषयक, श्रृंगार विषयक, वीरता विषयक होते हैं। नीति के मुक्तकों में सबसे अधिक विषय प्रधानता रहती है। गोस्वामी जी की दोहावली, कबीर रहीम वृंद आदि के दोहे भक्ति और नीति के पाठ्य मुक्तकों के अच्छे उदाहरण हैं। गिरधर की कुंडलियां और दीनदयाल गीर की अन्योक्तियां भी इसी कोटि में जाएंगी। हाल शक्त सती, बिहारी सत्सई, दुलारी दोहावली, श्रृंगार परक मुक्तकों के अच्छे उदाहरण हैं। यद्यपि इनमें और विषय भी हैं। वियोगी हरि की वीर सत्सई में वीर रस के दोहे हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी कविताएं जो स्फुट रूप से निकलती है मुक्तक की ही कोटि में आती है। साहित्य दर्पण ने दो दो, तीन तीन, चार चार और पांच पांच मुक्तकों के समूहों को क्रमशः युग्मक, संदानिक, कलापरक और कुलक नाम दिया है। गीति काव्य इस प्रगीत काव्य, गीति काव्य या गीति काव्य को हम ज्ञेय मुक्तक कहेंगे। अंग्रेजी में इसे लिरिक कहते हैं। लिरिक शब्द का संबंध वीणा की भांति के नामक वाद्य यंत्र से है, इसलिए कुछ लोगों ने लिरिक का अनुवाद पृष्ठ 113 वैणिक किया है। वैणिक शब्द पुराना है, किंतु इसका प्रगीत काव्य से कोई संबंध न था। वैणिक एक प्रकार के चित्रों की संज्ञा थी। वैणिक या लिरिक शब्द का मूल अर्थ तो वीणा से संबंध रखने वाला है, किंतु प्रायः ज्ञेय पदों में भावातिरेक और निजीपन अधिक रहता था, इसलिए निजी भावातिरेक का प्राधान्य इस विधा का मूल तत्व हो गया है। अंग्रेजी के आलोचन संबंधी ग्रंथों में लिरिक की इस प्रकार परिभाषा दी गई है। लिरिक पोइट्री एज द नेम इम्प्लीज लिरिक सॉन्ग पोइट्री इज पोइट्री ओरिजिनली इंटेंड टू बी एकॉम्पेन्ड बाय द लिरिक ऑफ बाय सम अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक द टर्म हैज कम टू सिग्निफाई एंड आउटबर्स्ट इन सॉन्ग विच इज कंपोज्ड अंडर ए स्ट्रॉन्ग इम्पल्स ऑफ इमोशन और इंस्पिरेशन जजमेंट इन लिटरेचर पेज नंबर 97। इससे प्रतीत होता है कि प्रगीत काव्य में स्वतः स्फूर्ति की मात्रा कुछ अधिक होती है। मनोवेग या भाववेग उसकी प्रेरक शक्ति होती है। संगीत तो गीत काव्य के नाम से ही लगा हुआ है। शरीर रूप से तो यह उसका बाहरी आकार तथा भावातिरेक का स्वाभाविक माध्यम है। भावातिरेक के लिए बहाव चाहिए, वह साधारण पद में रुक सा जाता है, किंतु गीत लहरी में तरंगित होकर बह उठता है। संगीत यदि उसका शरीर है तो निजी भावातिरेक और आत्मनिवेदन उसकी आत्मा है। यह भावातिरेक सुख दुख दोनों का ही हो सकता है। सुख और दुख की गीत में अभिव्यक्ति जीवन को एक प्रकार का संतुलन प्रदान करती है। भाव का वेग के अवरुद्ध जल को बांधने के लिए मानव शरीर बड़ा दुर्बल है। हमारे साधारण आवेग भी अश्रुकंप, हास, रोमांच, भ्रूभंग आदि द्वारा मस्तिष्क की चार दीवारें में बंद न रहकर अपनी झलक दिखा जाते हैं। फिर तीव्र आवेगों का तो कहना ही क्या, वे भाषा के माध्यम से प्रवाहित होने लगते हैं। गीत द्वारा हर्ष के विस्तार और आत्मा के उल्लास के लिए पंख से मिल जाते हैं और भावों को एक विशेष प्रवाहमानता प्राप्त हो जाती है। दुख के गीत अपनी अभिव्यक्ति में प्रतिध्वनित हो सहानुभूति का काम देते हैं। गीत काव्य में भी कवि अपने व्यक्तित्व से ऊंचा उठता है, किंतु उसमें कवि का निजी व्यक्तित्व उसके साधारणीकृत कवि के व्यक्तित्व को स्पर्श किए रहता है और उसको बल प्रदान करता है। प्रगीत काव्य में कवि जो कुछ कहता है अपने निजी दृष्टिकोण से कहता है, उसमें निजीपन के साथ रागात्मकता रहती है। यह रागात्मकता आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट होती है। रागात्मकता में तीव्रता बनाए रखने के लिए उसका अपेक्षाकृत छोटा होना आवश्यक है। आकार की इस संक्षिप्तता के साथ भाव की एकता और अनवीति लगी रहती है। छोटेपन की सार्थकता भाव की अनवीति में है। गीत काव्य में विविधता रहती है, किंतु वह प्रायः एक ही केंद्रीय भाव की पुष्टि के लिए होती है। वह केंद्रीय भाव प्रायः एक या स्थाई में रहता है और वह बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार पृष्ठ 114 प्रभाव घनीभूत होता रहता है और भाव की अनुभूति भी हो जाती है। संक्षेप में प्रगीत काव्य के तत्व इस प्रकार हैं: संगीतात्मकता और उसके अनुकूल सरल प्रवाहमयी कोमल कान पदावली निजी रागात्मकता जो प्रायः आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट होती है, संक्षिप्तता और भाव की एकता, यह काव्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा अधिक अंत प्रेरित होता है और इसी कारण इसमें कला होते हुए भी कृत्रिमता का अभाव रहता है। प्रगीत काव्य के कई रूप हो सकते हैं, सवैय आदि भी गेय हैं, किंतु गीत इसका मुख्य रूप है। श्रीमती महादेवी वर्मा ने, जिनका स्थान आजकल के गीत काव्य लिखने वालों में बहुत ऊंचा है, गीत की परिभाषा इस प्रकार दी है: साधारणतः गीत व्यक्तिगत इस सीमा में तीव्र सुख दुखात्मक अनुभूति का वह शब्द रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य अनुभूति को तीव्र बनाए रखना तथा उसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाव की अभिव्यक्ति पर थोड़ा समय संयम भी आवश्यक हो जाता है। जल बांधी हुई नाली में ही गति के साथ बह सकता है। यह नियंत्रण और संयम बाहर से नहीं वरन स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। गीत और इतिवृत्त। गीत या प्रगीत काव्य के लिए यह प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि जब उसमें रागात्मक आत्मनिवेदन एक आवश्यक तत्व है, तब गीतावली के या सूर सागर के कथा संबंधी पदों का क्या स्थान है? क्या वे प्रगीत काव्य की संज्ञा के बाहर हो जाते हैं? जहाँ पर भक्त अपने निजी उल्लास के साथ अपने इष्ट देव की लीला का वर्णन करता है, वहाँ उसमें रागात्मक आत्मनिवेदन आ ही जाता है। सूर और तुलसी के पदों में यह रागात्मक निजीपन पूर्ण रूप में पाया जाता है। सूर तो पद के अंत में सूर के प्रभु या सूर के ठाकुर कहकर निजी संबंध स्थापित कर लेते हैं। नाम की यह छाप आत्मख्याति के लिए नहीं होती वरन अपना निजीपन प्रकट करने को होती है। श्रीमती महादेवी वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि मिट्टी के भरे पात्र में जैसे रचकर ही अपने भीतर पानी के लिए जगह बना देता है, वैसे ही यथार्थ के लिए भाव में ऐसी स्वाभाविक स्थिति चाहिए जो भाव ही से मिल सके। इससे अधिक इतिवृत्त गीत में नहीं समा पाता, इसलिए गीतकार को बहुत सी बातें छोड़ देनी पड़ती है। रौद्र भयानक विभत्स रस गीत काव्य के कोमलार्ध के कारण त्याज्य हो जाते हैं। इसी कारण तुलसीदास जी की गीतावली में युद्ध का वर्णन नहीं के बराबर है। लोकगीत और साहित्यिक गीत। गीत लोकगीत भी होते हैं और साहित्यिक भी। गीत लोकगीतों के निर्माता प्रायः अपना नाम अव्यक्त रखते हैं और कुछ में वह व्यक्त भी रहता है। बुंदेलखंडी कवि ईश्वरी की फागों में उसके नाम की छाप मिलती है। पृष्ठ 115 वे लोग भावना में अपने भाव मिला देते हैं। लोकगीतों में होता तो निजीपन ही है, किंतु उनमें साधारणीकरण और सामान्यता कुछ अधिक रहती है। तभी वे वैयक्तिक रस के अपेक्षा विशेष होली विवाह जन्मोत्सव आदि से रहता है। साहित्य गीतों में निर्माता का निजीपन अधिक रहता है। लोक गीतों में भी साहित्य गीतों की सी कल्पना रहती है। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने एक लोक गीत अपने संग्रह में दिया है। उसका भाव यह है कि एक हरिणी जिसके पति को राजा दशरथ ने आखेट में मार डाला था, माता कौशल्या के पास जाती है। वे पीढ़ा पर बैठी थी और वह उनसे अपनी खाल मांगती हुई कहती है कि मांस तो रसोई में रद रहा है, मुझे खाल दे दो, मैं उसे पेड़ पर टांग कर देखा करूंगी और समझूंगी कि मानो हिरण जीता है। माता कौशल्या कहती है कि इससे मेरे राम के लिए खंजरी बनेगी। जब जब खंजरी बनती बजती थी तब तब हरिणी कान उठाकर उसका शब्द सुनती थी और उसी ढाक के नीचे खड़ी होकर हिरण के लिए रोती थी। मचिए बैठी कौशल्या रानी हरिणी अरज करी, रानी मसवा त समझी रोसैया खलरिया हमें देती है। पिड़वा से तंगतियो खलरिया त हेरी फेरी देखी त्यों, रानी देखी देखी मन समझाए जनु हरिणी हरिना जीतई। जाओ हरिणी घर अपने खलरिया नाही दिवई, हरिणी खलरी का खंजड़ी मिड़ू भी त राम मोर खलियु। जब जब बाजई खंजड़िया सबत सुनी अनकई, हरिणी थाड़ी ढकुलिया के नीचे हरिणी का वसूरई। कविता कौमुदी भूमिका। इस गीत के अज्ञात कवि की कल्पना में करुण रस पराकाष्ठा को पहुंच गया है। एक विरहिणी नायिका की जिसका पति रात को प्रवास से लौटने वाला था, उत्साहमयी मनोदशा का चित्रण नीचे की पंक्तियों में देखिए। आज उधव मोरे चंदा जन्हैया आंगन लीपे, झिलमिल हो ही तरैया तो मैं तिन चौक धरे। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य। लोक गीत भी जातीय साहित्य से सामग्री ग्रहण करते रहते हैं। रामायण और महाभारत से संबंधित अनेकों लोक गीत हैं। लोक साहित्य और शिक्षित लोगों के साहित्य में आदान प्रदान होता रहता है। जायसी के पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध लोक साहित्य से ही मिलता जुलता है। साहित्य गीत कई प्रकार के होते हैं। इनमें हम दो भेद देखते हैं, कुछ तो पृष्ठ 116 शुद्ध संवेदनात्मक होते हैं, जैसे कबीर तथा मीरा के गीत अथवा तुलसी की विनय पत्रिका के पद। शुद्ध संवेदनात्मक में कुछ तो लौकिक प्रेम के होते हैं, कुछ आध्यात्मिक रहस्यवाद के होते हैं और कुछ सगुण भक्ति परक और कुछ में उपदेश रहता है। उनमें भी एक निजी संवेदन रहता है और कुछ कथाश्रित होते हैं, जैसे सूर के लीला संबंधी पद। उनमें भी कवि आत्मनिवेदन करता है कि है किंतु किसी दूसरे पात्र द्वारा। शुद्ध संवेदनात्मक गीतों में कवि स्वयं ही अपना निवेदन करता है, उसके निवेदन में और लोग भी भाग ले तो दूसरी बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि तुलसी अपने विनय के पदों में भी लोक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साहित्य गीतों का उदय लोक गीतों से ही हुआ है। मेरी समझ में तो महाकाव्य भी लोक गीतों के विकसित और संगठित रूप है। बहुत से साहित्य गीत भी लावणी आदि लोक गीतों के अनुकरण में बने हैं। इस प्रकार गीतों के कई रूप हो जाते हैं। पद शैली जिसमें पहली पंक्ति स्थायी या टेक होती है और शेष अंतरों की पंक्तियाँ या तो उसी से तुक सामने रखती हैं या आपस में तुक रखती हैं। दूसरे गजल लावणी तरस के गीत होते हैं और तीसरे आजकल के गीत जिनकी कुछ विशेषताएं अध्याय के अंत में दी गई हैं। गीत काव्य के अंग्रेजी रूप और उनके अनुकरण। गीत काव्य के अनेक रूप होते हैं क्योंकि मानव का हृदयोल्लास सीमाबद्ध नहीं किया जा सकता, उसका भावोल्लास नाना रूपों में प्रकट होता है। साहित्य की विधाओं में पूर्णता आना तो कठिन है ही, किंतु उनके अन्योन्य पार्थक्य की सीमाएं निर्धारित करना अत्यंत दुष्कर है। फिर भी अंग्रेजी साहित्य में जो विधाएं स्वीकृत हैं, उनकी कम से कम नाम संबंधी जानकारी कर लेना आवश्यक है। अंग्रेजी गीत काव्य में प्रायः निम्नलिखित प्रकार प्रचलित हैं: एक सोनेट अर्थात चतुर्दशी पदी,
दूसरा ओड अर्थात संबोधन गीत, तीन एलिजी अर्थात लोक गीत, चार सेटाइड अर्थात व्यंग गीत, पांच रिफ्लेक्टिव अर्थात विचारात्मक और छह उपदेशात्मक। इन विधाओं में सोनेट के आकार की प्रधानता थी, शेष में विषय की प्रधानता है। सोनेट का प्रचार पहले इटली में हुआ था। दांते ने सोनेट लिखे थे, इसमें 14 पंक्तियां होती हैं। इटली में इसके दो भाग रहते थे, पहली 8 पंक्तियों का, दूसरा 6 पंक्तियों का। इनमें एक ही भाव उत्प्रोत रहता था। पहली 8 पंक्तियों में भाव का प्रतिपादन रहता था और पिछली 6 पंक्तियों में कुछ निष्कर्ष या परिणाम रहता था। पहली अष्टपदी की तुक इस प्रकार रहती थी, ए बी बी ए बी बी ए, और षटपदी की तुकों का क्रम सी डी ई सी ए ई होता था। अंग्रेजी में मिल्टन ने इसी क्रम का अनुसरण किया। इसका दूसरा प्रकार शेक्सपियर का है, उसमें 3 चतुष्पदी और 1 द्विपदी रहती है। इसमें पहली की तीसरी से तुक मिलती है और दूसरी चौथी से। अंतिम पृष्ठ 117 द्वितीय की तुके आपस में मिलती हैं। हिंदी में तुक विन्यास के कई प्रयोग किए गए हैं। हिंदी में इन विधाओं के अनुरूप बहुत से गीत वर्तमान हैं। सोनेट तो हमारे यहाँ नहीं, किंतु कुछ लोगों ने जैसे प्रभाकर माजवे ने इनके अनुकरण में चतुर्दशी पदियाँ लिखी हैं। इनमें 14 पंक्तियाँ होती हैं। ओड या संबोधन गीत आजकल की हिंदी में काफी लिखे गए हैं। प्रसाद जी के किरण बसंत, दीप निराला जी के खंडहर के प्रति, भिक्षु शेफालिका, पंत के आंसू, छाया, बापू के प्रति, अंधकार के प्रति आदि आदि शीर्षक कविताएं संबोधन गीतों के अच्छे उदाहरण हैं। उर्दू में तो मर्तियों की बहुतायत है, किंतु हिंदी में शोक गीतों की कुछ कमी है। अंग्रेजी में ग्रे की एलिजी बहुत प्रसिद्ध है। इसका ग्रामीण विलाप के नाम से गुप्त जी द्वारा अनुवाद हुआ है। इसमें भावुकता के साथ चिंतन भी है। निराला जी द्वारा लिखित सर्वस्मृति, जो कि उन्होंने अपनी प्रिय पुत्री के निधन पर लिखी थी, शोक गीत का अच्छा उदाहरण उपस्थित करती है। मिश्र बंधुओं ने हाँ काशी प्रसाद शीर्षक एक कविता लिखी थी। व्यंग गीत उपालंभों के रूप में सूर में बहुतायत से मिलते हैं। भारतेंदु काल में भी कुछ ऐसे गीत लिखे गए। भारतेंदु जी का देखी तुम्हारी काशी व्यंग गीत ही कहा जाएगा। प्रसाद पंत आदि के कुछ गीत जैसे गुंजन के विचारात्मक की कोटि में आते हैं। उपदेशात्मक गीतों की हिंदी साहित्य में कमी नहीं। कबीर सूर तुलसी में इनका बाहुल्य है। श्री प्रभाकर माचवे द्वारा लिखित एक सोनेट उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया जाता है। सोनेट, मैंने जितना नारी तुमको याद किया है, प्यार किया है, तुमने भी क्या कभी भूल से सोचा था कैसा है यह मनु? मैंने क्या अपराध किया जो तुमने यो इसरार किया है? जाने कैसे विद्युत कर्षण से परसित है तनमन अड़ू अड़। तुम मेरे मानव की संगिनी, चपल विहंगिनी, नीट की शाखा, तुम मेरे मन की राका की एकमात्र नक्षत्र विशाखा, तुम हो मृगा की आद्रा हो नहीं रोहिणी, तुम अनुराधा, तुम छायापत ज्योति शिखा, तुम उल्का आलोक शलाका, संशय के सदनांधकार में विद्युत माला आई अचुंबिते, तुम हरिणी मालिनी शिखरिणी बसंत तिलका द्रुत विलंबिते, तुम छंदों की आदि प्रेरणा प्रथम श्लोक की प्रथुल वेदना, तुम श्रृंगार धरा या की मंद्रा क्रांता जो आर्या गीत स्तंभिते, मैं गतिहारा यति साग्रह से शून्य प्रभाकर, मैं वैनायक, तुम रागिनी और मैं गायक, तुम हो प्रत्यंचा और रिपीट, तुम हो प्रत्यंचा मैं सायक। तार सप्तक पृष्ठ 118। इसकी अंतिम पंक्ति में प्राचीन अलंकार प्रधान शैली, यहाँ मुद्रा अलंकार की प्रधानता है का कुछ आभास आ गया है। नीचे प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई एक सोनेट दी है, जिनमें शब्दों का चमत्कार इतना नहीं है, किंतु उसमें भावना चमत्कार और उसकी अनवीति भी कुछ अधिक है। सिंधु कवि का क्या बढ़वा अग्नि को यूं सह लेता, कभी शीत लहरों में शीतल ही कर देता। रमणी हृदय अथाह जो न दिखलाई पड़ता, तो क्या जल होकर ज्वाला इसे यूं फिर लड़ता। कौन जानता है नीचे में क्या बहता है, बालू में भी स्नेह कहो कैसे रहता है। फल्गु की है धार हृदय वामा का जैसे, सूखा ऊपर भीतर स्नेह सरोवर जैसे। ढकी बर्फ की शीतल ऊंची चोटी जिनकी, भीतर है क्या बात न जाने जाती उनकी। ज्वालामुखी समान कभी जब खुल जाते हैं, भस्म किया उनको जिनको वे पा जाते हैं। स्वच्छ स्नेह अंतरहित फल्गु सदृश किसी समय, कभी सिंधु ज्वालामुखी धन्य धन्य रमणी हृदय। डॉक्टर सुधेंद्र के हिंदी कविता में युगांतर से उद्धृत। इसमें अष्टपदी और शिष्टपदी का विभाजन नहीं है। शेक्सपियर की सोनेट की भांति इसमें कविता का सार अंतिम द्विपदी में है। उसका छंद भी भिन्न है। अंत्यानुप्रास क्रम इसमें भी शेक्सपियर से भिन्न है। हिंदी में इसके बहुत प्रयोग हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, बालकृष्ण राव, प्रभाकर माचवे, भारत भूषण अग्रवाल आदि महानुभावों ने इस विधा में बहुत परिष्कार और परिवर्तन किया है। पंक्तियों के योग की योजनाओं में के जैसे अष्टपदी और षष्ठपदी, तीन चतुष्पदी और एक द्विपदी, एक चतुष्पदी और एक दशपदी, सात द्विपदियां आदि होते हुए सब में एक भाव की अनुभूति रहती है। श्री सुमित्रानंदन पंत के एक संबोधन गीत का कुछ अंश नीचे दिया जाता है। अंधकार के प्रति अब न अगोचर रहो सुजान, निशानाथ के प्रियवर सहचर, अंधकार सपनों के यान, किसके पद की छाया हो तुम। पृष्ठ 119। किसका करते हो अभिमान, तुम अदृश्य हो, दृग अगम्य हो, किसे छिपाए हो छविमान। पल्लवीनी गीति काव्य का इतिहास। गीति काव्य का इतिहास स्वयं वेदों के से ही प्रारंभ होता है। साम वेद गायन ही है। गीत शब्द को कुछ लोगों ने स्त्रियों के गीतों में ही संकुचित कर दिया है। वैसे तो स्त्रियों के गीत भी मन के उत्साह के द्योतक होने के कारण गौरव की वस्तु है, किंतु गेय मात्र प्रगीत साहित्य नहीं है। वेदों में गीत बतलाना उनके गौरव को घटाना नहीं है। गीत शब्द का पूरा पूरा महत्व श्रीमद् भागवत गीता में देखा जा सकता है। गीता का भी तो अर्थ यही है कि जो गाया गया हो। स्वयं वेदों के गायकों ने उन्हें गीत कहा है। गिरमी वरुण तीमही, अर्थात हे मेरे वरुणीय, मैं तुम्हें अपने गीतों में बांधता हूँ। वैदिक साहित्य के पश्चात बौद्ध साहित्य की थेर गाथाओं का स्थान आता है। उनमें वैराग्य के प्रति हार्दिक राग और उत्साह के दर्शन होते हैं। एक उदाहरण महादेव वर्मा के गीत काव्य शीर्षक यह शब्द दोनों तरह से लिखा जाता है। गीत काव्य और गीति काव्य, संस्कृत में गीत शब्द नपुंसक लिंग है और गीति स्त्रीलिंग। लेख से महादेवी का विवेचनात्मक गद्य उद्धृत किया जाता है। सुनीला सुशेखा सुपेड़ुखा सचित पत्त छंदना विहंगमा सुमंजु घोसत नेताभि गजिनो तेतम रमिसंति बनम्भि झायिनम थेर गाथा। अर्थात जब तुम वन में ध्यानस्थ बैठे होगे, तब गहरी नीली ग्रीवा वाले सुंदर सुंदर शिखा शोभी तथा शोभर ईमान चित्रित पंखों से युक्त आकाशचारी पक्षी अपने सुमधुर करलव द्वारा घोष भरे मेघ का अभिनंदन करते हुए तुम्हें आनंद देंगे। वास्तव में गाथा शब्द का भी अर्थ गीत है। वैदिक साहित्य में ऋक और गाथा में अंतर किया गया है। वह यह कि ऋक में ईश्वर का स्तवन होता है और गाथा में मनुष्यों राजाओं आदि का। अंग्रेजी वैलेड की भांति इनमें लोक प्रसिद्धि प्राप्त राजा आदि के यशो विस्तारक कार्यों का वर्णन होता था। वाल्मीकि रामायण को गेय और पाठ्य दोनों ही कहा है, किंतु उसमें इतिवृत्त अधिक है और हृदय का रस कहीं कहीं ही बहता दिखाई पड़ता है। मेघदूत आदि को यद्यपि वे भी खंड काव्य में ही आते हैं, कुछ अधिक सत्यता के साथ गेय काव्य में रख सकते हैं, किंतु उसमें मुक्तक की अपेक्षा प्रबंधत्व अधिक है। उसका निजीपन भावना के संबंध से उसे प्रगीत के निकट ले आता है। जयदेव संस्कृत में गीत काव्य का असली रूप हमको जयदेव के गीत गोविंद में मिलता है। उनके गीत राग रागिनियों में बंधे हुए हैं। जयदेव ने विलास कथा कौतूहल पृष्ठ 120 की सरस चासनी में हरि स्मरण की औषधि देना चाहा है, किंतु आधुनिक युग के अभक्त रसकों के लिए उसमें औषधि की अपेक्षा उनकी मधुर कोमल कान पदावली का सरस राग ही अधिक मनोरम है। इसका एक उदाहरण नीचे दिया गया है। वसंत राग यहिता लाभ्याम गीयते, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मधुकर निकर करम्बित कोकिल कुंजित कुंज कुटीरे, विहरति हरि रिह सरस वसंते, नृत्ययी युवती जने समम सखी विरही जनस्य दुरंते। गीत गोविंद सर्ग 1 गीत 3। विद्यापति और चंडीदास के पदों में जयदेव की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। आपाद मस्तक भक्ति रस में आमग्न चैतन्य महाप्रभु के लिए तो विद्यापति में भक्ति रस ही था, किंतु साधारण लोग इनमें भक्ति की अपेक्षा श्रृंगार की गंध अधिक पाते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, विद्यापति में न तो रीति काल की सी कृत्रिमता है और न सूर की सी इष्ट देव के लीला वर्णन की भावना। राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को जीव ब्रह्म का रूपक भी कहना कुछ खींचतान होगी। उनकी भक्ति भावना यही तक है कि उन्होंने राधा कृष्ण को अपने काव्य का आलंबन बनाया है और उनको हरि तथा माधव कहकर संबोधित किया है। उनका हृदय श्रृंगार की सरसता और आप्लावितया और उनकी भक्ति भावना श्रृंगार के माधुर्य में दब गई है। जो कुछ भी हो, विद्यापति के पदों में पद लाले से सरस राग, हृदय का रस और उक्ति का वैचित्र सभी कुछ है। प्रेम की कभी न पूर्ण होने वाली साध के विषय में विद्यापति कहते हैं, सखी की पूछती अनुभव मोय, सेहो पेरित अनुराग बखानिए तिल तिल नूतन होय, जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुबोल श्रवनही सुनन श्रुति पथ परस न भेल, कत मधु जामिनी रभस गमा ओल न बूझल कैसन केल, लाख लाख युग हिय रखल तैयो हिय जुडल न गेल। इसमें रूप के क्षण क्षण में बदलने वाले रूप क्षणे क्षणे यन्न वता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया के अनुरूप तिल तिल नूतन होने वाले अनुभव की ओर संकेत है। रूप की अनन्यता की ओर भी इसमें संकेत है। यह तो प्रेम का मानसिक पक्ष है, किंतु विद्यापति में यह प्रबल नहीं है जितना कि भौतिक पक्ष। जहाँ जायसी और सूर में प्रेम की पीड़ा अधिक है, वहाँ विद्यापति में भौतिक सौंदर्य के प्रति हृदयोल्लास और मिलन की अधीरता है। विद्यापति ने कुछ भक्ति संबंधी गीत भी लिखे हैं, जिनसे प्रकट होता है कि पृष्ठ 121 हृदय में अंकुर अवश्य था, किंतु वह उनकी अत्यधिक श्रृंगारिकता के कारण दब गया था। देखिए, तातल सैकत बारी बिंदु समसुत मित रमणी समाज, तोहे बिसारी मन तामे समर पिनु अब मजुहब कौन काज, माधव हम परिणाम निराशा, तुम जगतारन दीन दयामय अतय तोहर विश्वासा। विद्यापति की पदावली। गंगा जी के स्तवन में निजीपन हार्दिकता और भाव सुकुमारता दर्शनीय है। बड़ सुख सार पावल तुम तीरे, छोड़ैत निकट नयन बह नीरे, करजोरी बिनमु विमल तरंगे, पुन दर्शन होए पुनमति गंगे, एक अपराध छेमव मोर जानी, परसल माए पाए तू पानी। विद्यापति की पदावली। इसमें ब्रज भाषा का सा माधुर्य है, सौ का ही बाहुल्य है, स्वर उसके आधिक्य ने इसे कोमलता प्रदान की है। छ भी ख हो गया है। वीर गाथाकार। इस युग में भी गीत काव्य का सृजन हुआ। यद्यपि इस काल का साहित्य अधिकांश में वर्णात्मक है, तथापि उसमें भी वीरोल्लास से गीत है, जैसे आलखंड में, और विरह मिलन के भी गीतों का अभाव नहीं। बीसलदेव रासो तो इतना श्रृंगारिक है कि उसके संबंध में तो यह भी प्रश्न है कि उसको वीर गाथा में स्थान देना चाहिए या नहीं। आलखंड में वर्णन कुछ अधिक है, बीसलदेव रासो गाने के उद्देश्य में से ही लिखा गया है। गायो है रात सड़े सब कोई, सांभल्या रात गंगा फल होई, कर जोड़े नरपति कहई, रात रसायण सुने सब कोई। कबीर। हिंदी में गीत काव्य के प्रथम दर्शन संत कवियों की वाणी में होते हैं। कबीर आदि ने निर्गुण को अपनी प्रेम साधना का विषय बनाने के लिए अपने भगवान को श्रृंगारित नायक का रूप दिया और स्वयं स्त्री रूप से राम की बहुरिया बनकर अपने उपास्य के प्रति विरह निवेदन किया है। इन गीतों में श्रृंगारिकता आवरण मात्र है और वह आवरण भी उनका झीनी बीनी चदरिया की भांति पारदर्शी है, फिर भी गीत के आवरण ने निर्गुण में भी थोड़ा आकर्षण भर दिया है। प्रश्न 122। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोह को यह संदेह रे, एक में वह तेज न सोवे, तब लग कैसे नेहरे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न तीर रे, ज्यों कामी को कामिनी प्यारी, ज्यों प्यासों को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, प्रेसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भये हैं, दिन देखे ज्यो जाए रे। कबीर वचनावली। ज्यो कामी को कामिनी प्यारी की उपमा को तुलसीदास ने भी अपनाया है। कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, अविनाशी दुल्हा कब मिली हो भक्तन के रचपाल, जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत प्यास प्यास, मैं ठारे बिरहिन भग जो प्रेतम तुमरी आस, छोड़े गेह नेह लगी तम सो भय चरणन लवलीन। कबीर वचनावली। कबीर ने इस प्रकार के विरह निवेदन के अतिरिक्त उपदेशात्मक वैराग्य के गीत भी लिखे हैं। या जग अंधा मैं के ही समझावो, एक दुई होए उन्हें समझावो, सब ही भुलाना पेट के धंधा, पानी के घोड़ा पवन अस्वरा, धरप पर जसु ओस के बुंदा। कबीर वचनावली। ऐसे गीतों में लोक हृदय के साथ सहज में सामंजस्य हो जाता है। सूर। सगुण भक्तों के पदों और गीतों में रागात्मक तत्व के कुछ अधिक वास्तविकता के साथ स्थापना हुई है। ब्रज में स्वयं कोई गीत परंपरा अवश्य रही होगी। उसके उदाहरण में तानसेन के बैजू बावरे के एक गीत का आश्चर्य आचार्य शुक्ल जी ने अपने सूरदास नामक ग्रंथ में उल्लेख किया है। वह इस प्रकार है। मुरली बजाव रिझाई लय मुख मोहन ते, गोपी रिझी रही रसनातन, सौ सुध बुध सब बिसराई, धुनी सुनी मन मोहे मगन भई, देखत हरि आनन, जीव जंतु पशु पंछी सुर नर मुनि मोहे, हरे सबके प्राणन, बैजू बनवारी बंसी अधर धरी, वृंदावन चंद बस किए सुनत ही कानन। हिंदी साहित्य का इतिहास। इस स्थानीय परंपरा के अतिरिक्त चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवाहित की हुई जयदेव और विद्यापति की गीत लहरी का प्रभाव भी सूर आदि अष्टछाप के कवियों पर अवश्य पड़ा। पृष्ठ 123। सूर के पदों में जयदेव के गीत गोविंद के पहले पद मेघ है मेदु रंबरम वन भूषह श्यामास्त मालद्रुमेह का छाया अनुवाद भी मिलता है। गगन घराई जुरी घटाकारी, पवन झकझोर चपला चमक चहु ओर, सुवन तन छितै नंद डरत भारी, कहियो वुश भानो की कुमरी सौ बौली कै, राधिका कान घर लिए जारी, अंग पुलकित भय मदन्नित तन जय सूर प्रभु श्याम श्याम बिहारी। सूर सागर। किंतु यह अवश्य ही मानना पड़ेगा कि ब्रज भाषा में सूर आदि पदों में इस शैली का परमोच्च विकास दिखाई पड़ता है। तुलसी ने विनय पत्रिका और गीतावली में ब्रज भाषा के माध्यम को ग्रहण कर इस शैली को अपनाया। सूर तुलसी के विनय के पदों में तो निजीपन की स्पष्ट झलक है, किंतु उनके लीला संबंधी पदों में भी गायकों का हृदय बोलता हुआ सुनाई पड़ता है। तुलसी कौशल्या के विरह वर्णन में भी अपने दास भाव को नहीं छिपा सके हैं। जननी निरखती बान धनुहिया बार बार उर नैननी लावती प्रभु जू की ललित पनहिया। गीतावली अयोध्या कांड। कवि विभिन्न पात्रों से तादात्म्य कर नाना रूपों में हृदय के अनुराग को उड़ेल देता है। सूर कभी सखा बनकर श्री कृष्ण की बाल लीला में आनंद लेते हैं, तो कभी यशोदा के हृदय में बैठकर वात्सल्य सुख का अनुभव करते हैं। सूर महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उनकी निम्नलिखित भावनाओं से सूर ने तादात्म्य किया है।
यच सुखम यशोदाया नंदादीनाम च गोकुले गोपिकानाम च यद् दुखम तद् दुखम स्यान्मयम् क्वचित। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास से उद्धृत। सूर भी अपने पात्रों के साथ गाए और रोए हैं। यशोदा के सुख में वे सुखी हुए हैं और गोपिकाओं के दुख में उन्होंने स्वयं वियोग दुख का अनुभव किया है। सूरदास जी नीचे की पंक्तियों में यशोदा के सुख का आनंदानुभव करते हैं। हरि अपने आंगन कछु गावत तनक तनक चरणनी सौ नाचत मनही मनही रिझावत बाह उठाई काजरी धौरी गयन टेरी बुलावत कबहु चितय प्रतिबिंब खम्ब में लौनी लिए खवावत दूरी देखती जसुमति यह लीला हर्ष आनंद बढ़ावत सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भावत। सूर सागर पृष्ठ 124। इसमें माता के साथ सूर भी सिहर उठे हैं। नीचे की पंक्तियों में सूर ने गोपिकाओं के साथ रोने का आनंद लिया है। देखो माई नयनन सौ घन हारे बिनु ही ऋतु बरसत निसि बासर सदा सजल दो तारे सुमरी सुमरी गरजत निसि बासर अस्नु सलिल के धारे बूढ़त ब्रज ही सूर को राखे बिनु गिरवरधर प्यारे बिनु गोपाल बौरिन भई कुंजे तब ये लता लगती अति शीतल अब भई विषम ज्वाल की पुंजे वृथा बहती जमुना खग बोलत वृथा कमल फूले अलि गुंजे। सूरदास प्रभु को मगजोवत अखियां भई बरंज्यों गुंजे। भ्रमर गीत सार। कृष्ण काव्य में माधुर्य पक्ष के कारण गीत काव्य का प्राधान्य रहा। रास नृत्य संबंधी पदों में भाषा स्वयं थिरकती हुई दिखाई पड़ती है। अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त और संप्रदायों के भक्तों ने सुंदर पद लिखे। शब्द माधुर्य के लिए हित हरिवंश जी के पद बड़े सुंदर है। आज बन नीको रास बनायो पुलीन पवित्र सुभग जमुना तट मोहन बेनु बजायो कल कंकन किंकन नुपुर धुनि सुनी खग मृग सचु पायो जुवतनी मंडल मध्य श्याम घन सारंग राग जमायो ताल मृदंग उपंग मुरज ढप मिली रस सिंधु बढ़ायो। ब्रज माधुरी सार से उद्धृत। मीरा जहाँ सूर आदि गोपियों से तादात्म्य कर उनके साथ रोए और गाए हैं, वहाँ मीरा ने गिरधर गोपाल को स्वयं ही पति मानकर उनके प्रति आत्मनिवेदन किया है। उसमें निजीपन की पराकाष्ठा आ गई है। उसकी तन्मयता और उल्लास अतुलनीय है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई संतन ढिंग बैठ बैठे लोक लाज खोई मैं तो सावरे के रंग राची। पृष्ठ 125। साज सिंगार बांध पग घुंगरू लोक लाज तजी नाची हेरी मैं तो दर्द दीवाणी मेरो दर्द न जाने कोई घायल की गति घायल जाने की जिन लाई लो होई ओहर होई सूली ऊपर सेज हमारी सोवण किस विधि होई। मीरा गीतावली। वर्तमान युग सामान्य परिचय। आज वैयक्तिकता के प्राधान्य के कारण गीत काव्य का प्रचलन बढ़ गया है। यह युग प्रबंध काव्य का नहीं है। आधुनिक लोगों में वह भावना नहीं रही है कि अपने चरित नायक के व्यक्तित्व में अपना व्यक्तित्व मिला सके।